नमस्कार भारत, आज है 3 जून, दिन शनिवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। करुणानिधि के 94वें जन्मदिन के बहाने चेन्नई में जुट रहे हैं विपक्षी दलों के कई नेता, महागठबंधन पर बनेगी बात।
अब मिल रहे हैं झंडे करुणानिधि साहब को हमारे रेस्पेक्ट पे करने के लिए, लेकिन मुलाकातें जब होती है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है उसके आधार पर।
4 यूरोपीय देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर रूस के बाद फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय मूल के लियो वराडकर बनेंगे आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री। और सुनिएगा विवेचना लेखक और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास पर, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को दिया था ब्रेक।
कई बार मैं रात को जब सो रहा होता था तो नींद उठती थी तो देखता था कि अब्बास साहब भी वहीं बगल में ही जमीन पर ही लेटे हुए हैं, और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो लालटेन लेकर के काम किया करते थे।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि के जन्मदिन समारोह में विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता पहुंच रहे हैं और इस बहाने केंद्र सरकार के खिलाफ एक साझा रणनीति के कयास भी लगाए जा रहे हैं। उनके जन्मदिन पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीपीएम के सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता शामिल होंगे। इसे विपक्षी एकता के एक मंच के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीबीसी के क्वेश्चन टाइम कार्यक्रम में ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने लोगों के मुश्किल सवालों का सामना किया। प्रधानमंत्री टेरेसा मे को सैलरी रुकने की वजह से गुस्सा नर्स और बुरे व्यवहार झेलने वाली एक महिला का सामना करना पड़ा। उनसे ब्रेग्जिट पर जनमत संग्रह से पहले यूरोपीय संघ के साथ बने रहने के अपने समर्थन को लेकर भी बार बार सवाल पूछे गए। अपने प्रतिद्वंदी से सीधी बहस न करने पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा,
Can I just say I'm not refusing to take part in debates because I'm here answering questions from you.
क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहसों में हिस्सा लेने से मना नहीं कर रही, क्योंकि आज शाम मैं यहाँ आप लोगों के सवालों के जवाब दे रही हूँ और इस चुनाव में मुझे लगता है कि यही अहमियत रखता है, नेताओं का आपस में जिरह करना नहीं बल्कि वोटरों को सुनना और उनके सवाल लेना। ये थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे के शब्द। वहीं लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि ये शर्म की बात है कि टेरेसा मे ने उनसे सीधी बहस करने से इनकार कर दिया। जेरेमी कॉर्बिन ने पेरिस पर्यावरण समझौते से अलग होने पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना से बात शुरू की और ये भी कहा कि उन्होंने किसी दल से कोई समझौता नहीं किया है। एक शख्स ने कॉर्बिन से पूछा कि ब्रिटेन पर हमला होने की सूरत में क्या वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने कहा,
I would do everything I can to ensure that any threat
मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करूंगा कि पहले बातचीत के जरिए हर खतरे से निपटा जाए ताकि हम परमाणु अप्रसार संधि पर अपने दायित्वों पर बने रहें। हम चीन को प्रोत्साहित करते हैं कि वह उत्तर कोरिया के मसले को सुलझाने के लिए बहुपक्षीय बातचीत की कोशिश कर रहा है और हम राष्ट्रपति ओबामा के रास्ते के पक्षधर हैं जब उन्होंने ईरान के साथ समझौता करके उसे परमाणु ताकत विकसित करने से रोक दिया था। ये थे लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। न्यूयॉर्क में पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने वादा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पेरिस समझौते से बाहर आने के बाद भी अमरीका के लोग जलवायु परिवर्तन पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे अमरीका में शहर, प्रांत और कंपनियां पेरिस समझौते का पालन करने के लिए एकजुट हो रही हैं। अरबपति ब्लूमबर्ग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत हैं। व्हाइट हाउस ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन पर अपनी राय पर कायम है या नहीं। राष्ट्रपति बनने के काफ़ी पहले से वह इसे एक छल कहते रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति के विचारों की जानकारी नहीं है। पर्यावरण संरक्षण संस्था के मुखिया स्कॉट प्रूवेट ने भी यह सवाल टाल दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया की 4 कंपनियों और 14 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस तरह यूएन ने प्योंगयांग पर लगातार हो रहे मिसाइल परीक्षणों पर लगाम लगाने का दबाव बनाने की कोशिश की है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, डीएमके नेता एम करुणानिधि आज 94वां जन्मदिन अपना मना रहे हैं। इस मौके पर चेन्नई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रमुख विपक्षी दलों के कई नेता भी शरीक होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे नेताओं को न्योता भेजा गया है, और इनमें से ज्यादातर ने जलसे में शरीक होने की हामी भी भर दी है। मई के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बुलावे पर 17 विपक्षी दलों के नेता लंच पर जुटे थे। उसके बाद ये दूसरा मौका है जब विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करती नजर आ रही हैं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जन्मदिन के बहाने सियासी गठजोड़ बनाने की कोशिश पर इमरान कुरैशी की रिपोर्ट सुनिए।
26 साल पहले चेन्नई में ही डीएमके नेता एम करुणानिधि ने एक शानदार समारोह का आयोजन किया था। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और उसके खिलाफ विपक्षी दलों के नेता चेन्नई में करुणानिधि के मंच पर एकजुट हुए थे। इसी समारोह के बाद वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा बना था। एक बार फिर करुणानिधि का ही मंच है जब भाजपा की सत्ता के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा ने बीबीसी को बताया,
देखिए भारतीय राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा है कि हम वरिष्ठ नेता हो चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो, हम उनको उनके जन्म दिवस पर बधाई देते हैं। और रही बात विपक्ष एकता को लेकर के, तो हाँ वो यूपीए के एक संयोजक रहे हैं, घटक दल के वो महत्वपूर्ण मेंबर रहे हैं, और 3 तारीख को उनका जन्मदिन है तो पूरे देश से वहाँ नेता एकत्रित हो रहे हैं। और उसके बाद जो है 4 तारीख को आंध्र प्रदेश में गुंटूर में एक पब्लिक रैली रखी गई है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल जी होंगे वहाँ, और वहाँ भी विपक्ष के कई नेता जो है वो शिरकत करेंगे।
दिलचस्प बात यह है कि गठबंधन की राजनीति में करुणानिधि दोनों तरफ से अपना राजनीतिक कौशल दिखा चुके हैं। वो बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी शामिल थे और कांग्रेस की मनमोहन सरकार में भी। विपक्षी दलों का मंच पर आना सरकार के लिए चिंता की बात हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषक आनंद सहाय कहते हैं,
ये दोनों इवेंट जो हैं, ये एक कड़ी स्टेजेस हैं। एक ऑपोजिशन यूनिटी जो है खट से तो खुल जा सिमसिम के तरह से तो नहीं हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। ये भी एक लंबा दौर है, लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज के दरमियान आपस में भी बहुत सी मुश्किलात हैं और कईयों के कांग्रेस पार्टी के साथ भी हैं। इस बात को नजर में रखते हुए इन्होंने अभी से प्रोसेस शुरू कर दिया है 2019 के लिए, और आने वाले वक्त में ऐसे मौके और भी आएंगे कि कोई भी कोई रास्ता निकाल के सर इकट्ठा होके उस पर चर्चा शुरू करें।
सहाय बिहार और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं। जब विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो जीत हासिल की, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसा गठबंधन नहीं हो सका, इसीलिए भाजपा को बड़ी जीत मिली। इस लिहाज से इस जन्मदिन समारोह को विपक्षी एकता की शुरुआत की तरह भी देखा जा सकता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
करुणानिधि के जन्मदिन के कार्यक्रम में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी हिस्सा लेने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने उनसे बात की और सबसे पहले पूछा कि कार्यक्रम का असल मकसद क्या है, करुणानिधि को बधाई देना या फिर विपक्ष को एकजुट रखना।
सबसे पहला मकसद तो ये है कि हमारी जो करुणानिधि साहब का जितना योगदान रहा देश की राजनीति के अंदर एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, इसकी रिकॉग्निशन में उनके लिए उनको अपनी बधाई, ये पहला उद्देश्य है। वहाँ पे विपक्षी नेताओं की मतलब सभी लोग, ज्यादातर लोग रहेंगे, बातचीत तो होगी जरूर।
अभी 17 दलों की एक मीटिंग दिल्ली में भी हुई थी, उसके बाद लगातार एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी बार आप सब मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक संकेत तो मिलता ही है।
बात तो सही है, ये तो वास्तविकता है। अभी जो आपने बताया, सब पार्टियों के मिलने का मकसद यही था कि मिलके एक विपक्षी कैंडिडेट थे हमें राष्ट्रपति चुनाव में। अब वो विपक्षी कैंडिडेट के चुनाव के एजेंडे पर पहले मिले थे, अब मिल रहे हैं एजेंडे करुणानिधि साहब को हमारे रेस्पेक्ट पे करने के लिए। लेकिन मुलाकातें जब होती है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है उसके आधार पर।
तो ये बात संकेतों से कुछ आगे बढ़ती हुई दिख रही है आपको?
जिस मकसद से मिल रहे हैं वो मकसद तो पूरा हो रहा है। पहला मकसद था आपका ज्वाइंट प्रेसिडेंसी कैंडिडेट का, वो होने वाला है। आगे की बात जब आगे समय आएगा, वो एजेंडा आएगी, सब पता चलेगा।
इस समय विपक्षी दल सब एक साथ आ रहे हैं, क्या ये जरूरत है या मजबूरी है?
ضرورت ہے, کوئی مجبوری خاص کوئی نہیں ہے, لیکن ضرورت پورے ملک کے لیے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک دھرم نرپیکھ جنتنتر کا گنتنتر جو ہمارے سمویدھانک جو ڈھانچہ ہے بھارت کے اندر, اسے بہت بڑا چوٹ پہنچ رہا ہے اور یہ اور خطرہ بڑھنے کا سنکیت مل رہے ہیں. اس سے دیش کو بچانا ہے اور اس ضرورت کے چلتے ہوئے یہ سب پارٹیاں اکٹھا ہوئے جو اپنے اپنے پرانتوں میں ایک دوسرے کے خلاف بھی جو مطلب چناؤ لڑتے رہے وہ بھی ساتھ آئے ہیں, اسی ایک مقصد کو دھیان میں رکھتے ہیں.
امیدواری کو لے کر راشٹرپتی چناؤ کے لیے کیا کوئی سہمتی ابھی تک بن پائی ہے؟
سہمتی بن پائی وہ پروسیس چالو ہے, وہ بن رہا ہے, بنے گا, لیکن اب ہم یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار کا کیا رجحان ہوگا. نارملی سرکار اور پردھان منتری پہل قدمی کرتے ہیں اس پہ, اور یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 30-40 سالوں میں کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے پردھان منتری جی کی طرف سے. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم اپنا وکلپ جو ہے وہ کھڑا کریں گے اور اس کے بارے میں چرچائیں چل رہی ہے.
تصویر کب تک صاف ہو سکتی ہے
بھائی؟ تصویر صاف ہونے میں سب سے بڑا بھومیکا سرکار کی بھی ہوگی. وہ تو بتائیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی کینڈیڈیٹ دیں گے یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ ابھی تک کچھ نہیں بتا پا رہے.
یہ تھے سی پی ایم مہا سچیو سیتارام یچوری.
نمسکار بھارت, شارٹ ویو 49, 41, 31 اور 25 میٹر بینڈ یعنی 6155, 7995, 9915 اور 11995 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
چار یوروپی دیشوں کے دورے پر گئے بھارتی پردھان منتری نریندر مودی اپنی یاترا کے آخری پڑاؤ پر فرانس پہنچ گئے ہیں. پردھان منتری مودی اس وقت فرانس کا دورہ کر رہے ہیں جب وہاں سنسدیہ چناؤ کی گہما گہمی ہے. دوسری طرف امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے پیرس سمجھوتے سے باہر نکلنے کے بعد جلوایو پریورتن کو لے کر ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے. ہمارے سہیوگی واتسل رائے نے پیرس میں موجود ورشٹھ پترکار ویجو نراونے سے بات کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ بھارتی پردھان منتری نریندر مودی کے فرانس دورے کا مہتو کیا ہے.
دیکھیے بھارت کے حساب سے وہ یہاں پر اس وقت آ رہے ہیں جب پورا سنسار ایک بہت انپریڈکٹیبل آدمی کا سامنا کر رہا ہے اور وہ اس آدمی کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ نے پورے جگ کو اوپر نیچا سا کر دیا ہے اور یہ جو کلائمیٹ چینج کی جو اگریمنٹ ہے اس کی انڈیا کی بہت سہمت ہے اس کے ساتھ. تو جب مودی جی جرمنی میں تھے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کلائمیٹ چینج کے خلاف ابھی کچھ فیصلہ لینا وہ کرمنل جیسی ایکشن ہو سکتی ہے. یہاں پر آ رہے ہیں جہاں پر وہ فیمس کلائمیٹ چینج کی ٹریٹی سائن کری ہوئی تھی. فرانس جو تھا وہ سب سے بڑا اس ٹریٹی کے پیچھے دیش تھا جنہوں نے بہت ہی اس کے اوپر ٹائم بھی ڈالا تھا, انرجی بھی ڈالی تھی اور اس اگریمنٹ کو کیور کرنے میں انہوں نے بہت محنت کی تھی. کل رات کو اگر ہم میکرون کی ڈیکلریشن دیکھتے ہیں تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بالکل غلط فیصلہ ہے. اور میرے خیال سے مودی جی اس وقت جب آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رافال کے بارے میں چرچا ہوگی یا نیوکلیئر پلانٹس کے بارے میں چرچا ہوگی یا اسمارٹ سٹیز کے بارے میں چرچا ہوگی, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن جرمنی میں گئے تھے, رشیا میں گئے تھے, اسپین میں جا رہے ہیں, فرانس میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی سٹیبلٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ان کو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ سے نہیں مل رہی ہے.
یہ تھی پیرس میں موجود ورشٹھ پترکار ویجو نراونے. بھارتی مول کے لیو وراٹکر آئرلینڈ کے اگلے پردھان منتری ہوں گے. 38 سال کے وراٹکر کی جڑیں بھارت کے ممبئی شہر سے جڑی ہیں. وہ آئرلینڈ کا نیتریتو کرنے والے سب سے کم عمر کے نیتا ہوں گے. چناؤں میں 60% ووٹ لے کر انہوں نے اپنے پرتدوندوی سائمن کووینی کو مات دی. انہوں نے سال 2015 میں اپنے سملینگک ہونے کی بات سارجنک کی تھی. بیورا سنیے کلدیپ مشر سے.
وراٹکر کے پتا ڈاکٹر اشوک جب ممبئی سے آئرلینڈ پہنچے تو وہ ملک آج کے مقابلے کافی الگ تھا. آئرش نرس مریم سے برکشر میں ان کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے شادی کر لی. 90 کے دشک تک آئرلینڈ میں سملینگکتا اور طلاق غیر قانونی تھے, لیکن 2015 میں ڈاکٹر اشوک اور مریم کے بیٹے نے کھلے طور پر سویکار کیا کہ وہ سملینگک ہیں اور آج وہ آئرلینڈ کے پردھان منتری بننے جا رہے ہیں. لیو وراٹکر کا راجنیتک سفر انتراشٹریہ سرخیوں میں رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے پتا کی طرح ڈاکٹری کی پڑھائی کی اور پھر 24 سال کی عمر میں ہی کاؤنسلر بن گئے. उन्हें सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी फाइन गेल का नेता चुन लिया गया है। जीतने के बाद उन्होंने कहा,
आयरलैंड इज अ वंडरफुल कंट्री एंड इट इज द काइंड ऑफ कंट्री दैट इफ पीपल आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड।
आयरलैंड एक खूबसूरत देश है और अगर लोगों को मौका दिया जाए तो वे सफल हो सकते हैं। और सच में मैं उम्मीद करता हूं कि आयरलैंड का कोई भी बच्चा मेरी तरफ देखे, मेरी अविश्वसनीय कहानी और पृष्ठभूमि को देखे, तो शायद वह खुद से कहेगा कि इस देश में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां बैठने का सपना मैं नहीं देख सकता। ये थे लियो वराटकर के शब्द। लियो वराटकर ने जीत के बाद अवसरों की समानता वाला गणतंत्र बनाने की बात कही, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी में उनके विरोधियों ने उनकी छवि दक्षिणपंथी के तौर पर गढ़ने की कोशिश की है। वराटकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती आयरलैंड की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और ब्रेक्जिट के बाद के हालात से निपटना होगा।
ब्यौरा सुना रहे थे कुलदीप मिश्र। और अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों में आज क्या खास छपा है, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिलनवाज पाशा। जी दिलनवाज
जी, अमरीश, रोज की तरह आज भी अरविंद केजरीवाल खबरों में छाए हुए हैं। कुछ दिनों से उन पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं और आज हिंदुस्तान बता रहा है आफत, PWD घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं। और दिल्ली में जहां केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, उससे उनके राजनीतिक पर भी कदरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है आम आदमी पार्टी गुजरात में जो उसकी चुनावों में जाने की योजना है उसको किनारे कर सकती है सिर्फ दिल्ली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो ये खबर आज के अखबारों में है और बाकी अखबारों में भी यही खबर पहले पन्ने पर है। कल जो कपिल मिश्र हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री, उन्होंने केजरीवाल पर एक और घोटाला करने के आरोप लगाए थे, तो उससे जुड़ी खबरें और जो वो हाथ में सबूत दिखा रहे हैं वो तस्वीरें अलग अलग अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। इसके अलावा एक खबर जो ध्यान खींच रही है, जनसत्ता में दहशत के मददगारों से दहशतगर्दों जैसा सलूक, ये भारत के सेना प्रमुख ने कहा है और इस बयान को प्रमुखता से छापा है। देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी जिसके मुताबिक किसानों ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के बाद आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन नई दुनिया में एक तस्वीर छपी है जिसमें दूध की दुकान के बाहर ऐसी लाइन लगी है जैसी नोटबंदी के दौरान लगी थी, बहुत लंबी लाइन है। और अखबार बता रहा है कि दूध जो है 100 रुपये प्रति लीटर तक के दर से बिक गया है, वो तस्वीरें कल हमने बताया था कैसे किसानों ने दूध बहा दिया है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज पाशा।
BBC इंडिया बोल।
क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान आमने सामने, 4 जून को बर्मिंगम में होगा चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबला। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच दो तरफा सीरीज पर लगी रोक भी हटनी चाहिए? इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप? अपनी राय जाहिर कीजिए BBC इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 3 जून शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि कोई शख्स एक बड़ा पत्रकार होने के साथ साथ उतना ही बड़ा फिल्मकार और कहानीकार भी हो। ख्वाजा अहमद अब्बास की गिनती ऐसी ही बड़ी शख्सियतों में होती है। आवारा, श्री 420, शहर और सपना और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में लिखने वाले KA अब्बास ने लगातार 45 सालों तक ब्लिट्स अखबार के आखिरी पन्ने का कॉलम लिखा। ख्वाजा अहमद अब्बास की 30वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल अपनी विवेचना में।
पहले सवाल तो ये पैदा होता है कि मैं क्या हूँ, तो मुश्किल ये है कि जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैं फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साफ इनकार करते हैं इससे कि मैं फिल्म वाला हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। और अदीब और क्रिटिक्स जो हैं वो मुझे अदब के महल में दाखिल होने से रोकते हैं।
ये आवाज़ है जाने माने लेखक, साहित्यकार और पत्रकार ख्वाजा अहमद अब्बास की। अक्सर जब उनसे सवाल पूछा जाता था कि आप ही बताइए आप हैं क्या, तो अक्सर गालिब का एक शेर सुनाते थे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। अपनी 73 साल की जिंदगी में अब्बास ने 74 किताबें लिखी। इसके अलावा उन्होंने 300 कहानियां भी लिखी और उनकी एक कहानी अबाबील को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक माना गया। डॉक्टर सैयदा सैयदेन हमीद अब्बास की भतीजी हैं और मशहूर लेखिका होने के साथ साथ योजना आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं। उनको अब्बास को नजदीक से देखने का मौका मिला था।
अब्बास साहब एक ह्यूमन डायनमो थे, बहुत चुलबुली तबीयत थी उनकी, और बच्चों के साथ बच्चा और जो बूढ़े हैं उनके साथ बुर्दबारी और सेंस ऑफ ह्यूमर, जल्दी से गुस्सा आ जाता था, जल्दी से ठीक हो जाते थे, अपनी किसी भी नाकामी को नाकामी नहीं मानते थे। पैसा होता नहीं था और फिल्म बनाना था और उसके लिए उम्मीद थी और आइडियल था। इतने इंटेलिजेंट और इतने इमोशनल इंसान थे कि, और इतने ही रहम दिल थे।
डॉक्टर सैयदा की अब्बास की शुरुआती यादें मुंबई और दिल्ली की हैं, जब वो उन्हें अपनी फिल्म के प्रीमियर के बाद रेस्तरां में खाना खिलाने ले जाते थे।
हम लोग बम्बई की फिल्मी ज़िंदगी से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उतने ही सख्ती से हमको रोका जाता था, मगर अब्बास साहब से इस पूरे ख़ानदान को मोहब्बत भी बहुत थी। तो उनकी जब फिल्म कोई रिलीज़ होती थी तो उनका एक स्टैंडर्ड ये था कि वो फिल्म जो प्रीमियर शो में हम बच्चों को ले जाएं और फिर उसके बाद हमें किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाएं। ये याद जो थी वो ऐसी वाबस्ता थी, और चुपके बॉम्बे जाना और उनसे चुपके चुपके कहना कि हमें शूटिंग पे ले जाइए, हम मीना कुमारी को देखना चाहते हैं, हम दिलीप कुमार को देखेंगे, हम राज कपूर, नरगिस, तो ये सब हमारी जो दिल के सब ख्वाहिशात थी।
ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने छात्र जीवन में ही जवाहरलाल नेहरू को अपना आदर्श मान लिया था। एक बार जब वो अलीगढ़ में पढ़ रहे थे तब उन्हें पता चला कि नेहरू कलकत्ता मेल से अलीगढ़ होते हुए इलाहाबाद जा रहे हैं।
Well, during these अलीगढ़ days, I remember being greatly impressed by the personality of जवाहरलाल नेहरू. It should be remembered that that time.
मुझे याद है अपने छात्र जीवन में मैं नेहरू से काफी प्रभावित रहा करता था। जब हमें पता चला कि उनकी ट्रेन अलीगढ़ से होकर गुजरेगी तो हमने तय किया कि हम एक स्टेशन पहले खुर्जा चले जाएंगे और उनके साथ उनके डिब्बे में बैठकर अलीगढ़ आएंगे। रास्ते में नेहरू ने हमसे पूछा, आप कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? हमने कहा, इतिहास। नेहरू का जवाब था, इतिहास को सिर्फ पढ़िए नहीं, उसको बनते हुए देखिए भी। जब ट्रेन अलीगढ़ के बाहरी इलाके में पहुंची तो मैंने उनके सामने अपनी ऑटोग्राफ बुक बढ़ा दी। उस पर उन्होंने कुछ लिखा। तब तक स्टेशन आ गया। वो नेहरू के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। नेहरू ने कहा, तुम प्लेटफॉर्म पर नहीं उतर पाओगे, इसलिए दूसरी तरफ से उतरो। उतरने और रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नेहरू तमाम जय जयकार के बीच अब भी ट्रेन के दरवाजे पर खड़े मुझे हाथ हिला रहे थे। जब मैंने अपनी ऑटोग्राफ बुक खोली तो उस पर लिखा था, लिव डेंजरसली, जवाहरलाल नेहरू।
ख्वाजा अहमद अब्बास ने राज कपूर के लिए कई फिल्में लिखी। इसकी शुरुआत 1951 में आवारा से हुई थी।
हमने दो फिल्में बनाई हैं अब्बास साहब पे। हमारे पास लकीली वो क्लिप मिल गया हमें कि जिसमें राज कपूर कहते हैं, अरे भाई हमारा क्या, बैठे हैं दोनों साथ साथ, वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हमारा क्या, हम कोई आइडिया है, उल्टा सीधा अब्बास साहब को बता देते हैं और अब्बास साहब इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी बना देते हैं। इन्होंने आवारा में साथ काम करना शुरू किया, फिर श्री 420 बनाई, उसके बाद इन्होंने डायलॉग्स लिखे जागते रहो के, फिर उन्होंने मेरा नाम जोकर लिखी और उसके बाद मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई तो उसको मेकअप करने के लिए फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा बॉबी, जो कि पूरी तरह से सब कुछ हिट हो गई और उनका पूरा नुकसान था वो सब पूरा हो गया। पर अब्बास साहब को राज कपूर से ये शिकायत थी कि राज कपूर मेरी स्क्रिप्ट्स को वो कर देते हैं, उसको एंटरटेनमेंट में ला के, और उनका जो मैसेज है वो कम हो जाता है, तो वो मेरी स्क्रिप्ट्स के साथ बहुत टेंपर करते हैं।
ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी बॉबी जबरदस्त हिट तो हुई, लेकिन अब्बास को राज कपूर द्वारा उनकी कहानी से की गई छेड़छाड़ पसंद नहीं आई।
उनका पूरा ये आइडिया था कि गरीब लड़की, अमीर लड़का, क्लास, ये वो, और उसमें वो पूरा जो उन्होंने एक प्रेमनाथ का जो एक उसमें है कि उनका वो लड़की का बाप जो था तो उसका भी एक वो मछेरा था गोवा का, राज कपूर ने उसको बहुत एक एंटरटेनमेंट में उसको बांध दिया, तो कभी वो उससे ज़्यादा खुश नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फेथफुल राज कपूर मुझसे आवारा में रहा, और उसके बाद राज कपूर ने इन्हिराफ करना शुरू कर दिया।
आवारा हूँ,
या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
अमिताभ बच्चन को पहला ब्रेक देने का श्रेय भी ख्वाजा अहमद अब्बास को जाता है। उन्होंने फिल्म सात हिंदुस्तानी में उन्हें एक मुस्लिम युवा का रोल दिया और वो भी उनके पिता हरिवंश राय बच्चन से पूछकर।
छह हिंदुस्तानी तो उनको मिल गए थे, अब सातवें की उनकी तलाश थी और उन्होंने कुछ कुछ मजाज पे इस कैरेक्टर को बनाया था। उनका एक यंग असिस्टेंट था इंदर राज आनंद का बेटा, वो उन्होंने कहा मामू जान मैं लेके आता हूँ, मेरा एक दोस्त है लंबा सा एक लड़का आया तो कहा कि तुम कौन हो, नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने कहा मेरा नाम अमिताभ है, पूरा नाम क्या, उसका अमिताभ बच्चन, तो कहे कहीं तो मेरे दोस्त हरिवंश राय बच्चन के तो बेटे नहीं हो। उसने कहा जी बाप की मर्जी से आए हो, उसने कहा जी मालूम है पेरेंट्स को, उन्होंने कहा नहीं मैं पहले उनको लिखूंगा, तो फिर उन्होंने इनको हरिवंश राय जी को खत लिखा कि ऐसा ऐसा है आप अगर इजाजत दें, तो उन्होंने फिर तार से उनको जवाब दिया कि अगर आपके साथ काम कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है।
आगे की घटनाएं इतिहास है। अमिताभ बच्चन अब्बास के इस जेस्चर को कभी नहीं भूले। बाद में उन्होंने एक जगह सात हिंदुस्तानी की शूटिंग को याद करते हुए कहा,
हम लोग सब यहाँ मुंबई के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में गए शूटिंग करने गोवा, थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ करके गए और वहाँ पर जब भी अवसर मिला पैदल चलते थे हम लोग अपना सामान वामान ढो करके। रहने के कोई होटल नहीं होता था, जहाँ सर्किट हाउस छोटे छोटे होते थे, जहाँ बिजली पानी वगैरह नहीं होता था वहाँ पर हम लोग रहते थे। एक ही हॉल किस्म का वहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ था, वहीं पर पूरा कास्ट क्रू सब एक साथ सोता था, चाहे आप कलाकार हो, चाहे आप कैमरामैन हो, चाहे आप स्पॉट बॉय हो, सब एक साथ वहीं सोते थे। उस जमाने में होल्डऑल होता था, पता नहीं आप लोग होल्डऑल समझते हैं कि नहीं, आजकल पूरा बोरी बिस्तर जो है वो एक होल्डऑल में से बंद कर दिया जाता, सब लोग अपना होल्डऑल खोलते थे उसी के अंदर सो जाते थे, सुबह उसको लपेटा और चल पड़े। कई बार मैं रात को जब सो रहा होता था तो नींद उठती थी तो देखता था कि अब्बास साहब भी वहीं बगल में ही जमीन पर ही लेटे हुए हैं, और क्योंकि बिजली नहीं थी तो वो लालटेन लेकर के काम किया करते थे अगले दिन की डायलॉग्स लिखने के लिए।
ख्वाजा अहमद अब्बास ने ब्लिट्स के आखिरी पन्ने पर लिखे जाने वाले साप्ताहिक कॉलम लास्ट पेज से भी बहुत नाम कमाया। दुनिया और भारत के हर ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, जिसे पूरे भारत ने बहुत ध्यान से पढ़ा।
सबसे जो यूनिक बात थी कि उन्होंने 45 साल तक बिला नागा हर हफ्ते उन्होंने ब्लिट्स का वो लास्ट पेज लिखा, और हद ये थी कि ये कहते थे कि लोग ब्लिट्स लास्ट पेज से शुरू करते थे पढ़ना, और लास्ट पेज का अट्रैक्शन ये था कि उसमें एक पिनअप मॉडल की हमेशा तस्वीर होती थी, तो वो भी अट्रैक्शन होता था। तो पहले तो पिनअप मॉडल देखते थे, फिर अब्बास साहब का आर्टिकल पढ़ते थे। तो इस तरह से अब्बास साहब ने उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज, वो बहुत पॉपुलर हो गया था उनका। वही कॉलम उन्होंने हिंदी और उर्दू ब्लिट्स में भी आज़ाद कलम के नाम से लिखा। जो भी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स होते थे उसको वो एक बहुत ही चैटी अंदाज में कि लोग उसको पढ़ भी लें और उसमें उनका जो मैसेज देना चाहते थे वो मैसेज भी मिल जाए। और आखिरी जो उन्होंने लास्ट पेज लिखा वो था द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ ख्वाजा अहमद अब्बास। उसमें ये लिखा कि मेरे जब मैं मरूं तो मेरे कफन के बदले में मेरे सीने पे ब्लिट्स के लास्ट पेजेस के वरक हों।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। चेन्नई में डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि के जन्मदिन समारोह में विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता पहुंच रहे हैं और इस बहाने केंद्र सरकार के खिलाफ एक साझा रणनीति के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बीबीसी के क्वेश्चन टाइम कार्यक्रम में ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे और लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने लोगों के मुश्किल सवालों का सामना किया। प्रधानमंत्री टेरिजा मे को सैलरी रुकने की वजह से गुस्सा नर्स और बुरे व्यवहार झेलने वाली एक महिला का सामना करना पड़ा। वहीं लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा कि ये शर्म की बात है कि टेरिजा मे ने उनसे सीधी बहस करने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने वादा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पेरिस समझौते से बाहर आने के बाद भी अमेरिका के लोग जलवायु परिवर्तन पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। उधर व्हाइट हाउस ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन पर अपनी राय पर कायम हैं या नहीं। राष्ट्रपति बनने के काफ़ी पहले से वह इसे एक छल कहते रहे हैं। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।